नमस्कार, स्वागत है आपका आप ही के कार्यक्रम ज्ञान यज्ञ में। जिस प्रकार शरीर के लिए भोजन की जरूरत होती है, उसी प्रकार शरीर में रहने वाली आत्मा के लिए आध्यात्मिक ज्ञान की बहुत आवश्यकता होती है। तो आध्यात्मिक ज्ञान की गहराई को समझने के लिए जानते हैं आज की गहरी बात।
हमारे मन में जो विचार आते हैं वह कर्म में बदल जाते हैं और पुनः पुनः ये कर्म होने से यह आदत बन जाते हैं, जिसको हम संस्कार कहते हैं। संस्कार आत्मा की वो शक्ति है जो जीवन को दिशा प्रदान करती है। इसलिए यह संस्कार है जो हमें मानव या दानव भी बना सकते हैं। आत्मा में अथाह शक्ति होती है और उस शक्ति को पहचानने से अपने आध्यात्मिक अस्तित्व की पहचान होती है। इसलिए जीवन में दृढ़ता के बीच से हम आध्यात्मिकता का पौधा लगा सकते हैं और उसमें सकारात्मक विचारों का जल डालकर हम अपने जीवन में सुख व शांति के पुष्प पल्लवित कर सकते हैं।
फूल चाहे कितना भी आकर्षक क्यों ना हो, यदि उसमें खुशबू नहीं है तो वह किस काम का। उसी प्रकार यदि हमारे जीवन में आध्यात्मिक ज्ञान नहीं है तो हमारे जीवन का कोई महत्व नहीं। तो आइए जानते हैं कि आध्यात्मिक अस्तित्व की पहचान कैसे हो, ब्रह्मा कुमारी उषा बहन जी से।
ओम शांति। राजयोग का मुख्य आधार स्वयं की पहचान, क्योंकि आत्मज्ञान से ही आत्म अनुभूति होती है और आत्म अनुभूति से ही आत्म शुद्धि होती है। और इसीलिए जब तक स्वयं को नहीं पहचाना, पिता परमात्मा को नहीं पहचाना, तब तक वो योग अर्थात संबंध का अनुभव कैसे होगा। संसार के अंदर अनेक प्रकार के योग सिखाए जाते हैं, ज्ञान योग, भक्ति योग, बुद्धि योग, कर्म योग, संन्यास योग, समत्व योग, अनेक प्रकार के योग सिखाए जाते हैं। लेकिन इन सभी योगों में राजयोग ही भगवान ने अर्जुन को गीता के अंदर सिखाया कि जिस राजयोग से ही राज्य पद की प्राप्ति का वृत्तांत है। और राज्य पद अर्थात कोई दूसरों पर राज्य करने की बात नहीं है, राज्य अर्थात स्वराज्य, अपनी इंद्रियों के ऊपर राज्य प्राप्त करना। और इसीलिए ये बात जब कही कि मन जीते जगत जीत, जिसने मन को अपने वश में किया है उसने जगत को जीता बराबर है। मन को वश करना मनुष्य समझते हैं बहुत मुश्किल है, इतना आसान नहीं है, परंतु मन क्या चीज है, जब उसको समझ लेते हैं तो उसको वश करना भी सहज हो जाता है। एक बच्चे की साइकोलॉजी को जब माँ समझती है तो उसकी हर चंचलता को शांत करने की विधि उसके पास होती है। मन भी अगर चंचल है तो मन को अच्छी तरह हम समझे तो मन को शांत करने की विधि हमारे पास भी आ जाती है। और इसके लिए योग अर्थात वैसे मनुष्य का देखा जाए तो इस संसार में अनेक स्तरों पर योग है। योग अर्थात एक संबंध, जोड़ या मिलन। पहला स्तर है कि जहां मनुष्य का संबंध भौतिक चीज वस्तुओं के साथ है उसको कहते हैं भौतिक योग है। दूसरा एक स्तर है जहां मनुष्य का संबंध समय के साथ होता है उसको कहते हैं समय के साथ योग है। कोई बात हो जाती है तो कहेंगे समय का योग था इसीलिए हो गई, या नहीं होती है तो कहेंगे समय का योग नहीं था। तीसरा एक स्तर है जहां व्यक्ति का व्यक्ति के साथ संबंध है उसको कहते हैं व्यक्ति का योग या लौकिक योग। एक और स्तर भी है जहां व्यक्ति का संबंध इष्ट देवी देवताओं के साथ है उसको कहते हैं दैवी योग या अलौकिक योग। लेकिन राजयोग अर्थात आत्मा का परमात्मा के साथ योग। राजयोग को सर्वश्रेष्ठ क्यों कहा गया? इसीलिए उसको सर्वश्रेष्ठ कहा जाता है क्योंकि बाकी सभी योग में मनुष्य स्वयं को भी देह समझते हैं और देह अभिमान में दूसरे के साथ संबंध में आते हैं, जबकि राजयोग में हमें स्वयं को आत्मनिश्चय करना है कि मैं देह नहीं आत्मा हूँ और आत्मा के एक शुद्ध नशे में स्वयं को स्थित करके पिता परमात्मा के साथ संबंध जोड़ते हैं। यानी दूसरे शब्द में अगर कहे तो हमारी कॉन्शियसनेस लेवल को ऊपर उठाना है और पिता परमात्मा के साथ वो संबंध जोड़ना है। जब हम कहते हैं कि बाकी सभी योग में मनुष्य देह अभिमान में होते हैं तो देह अभिमान किसको कहते हैं? अक्सर हमें ये पता चल जाता है कि दूसरा जब अभिमान में होकर के कुछ बातचीत करता है या व्यवहार करता है तो हम क्या कहते हैं, उसको बहुत अपना अभिमान है। लेकिन हम खुद अभिमान में है या नहीं है उसका पता नहीं लगता है। तो देह अभिमान में जब है इसका पता कैसे चले? तो जब हमारे संकल्प, भावना, मनोवृत्ति, दृष्टि, बोल चाल, व्यवहार, ये सब बातें बुराइयों से प्रभावित है, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ईर्ष्या, नफरत, इनके आधार पर जब प्रभावित है, कोई व्यक्ति किसी से ईर्ष्यावश कोई बात कहता है तो हम क्या कहते हैं, उसको अपना अभिमान बहुत है इसीलिए देखो कैसी ईर्ष्या आ गई उसको। तो ईर्ष्या के वश हो गए इसलिए हम कहते हैं इसको अभिमान है। किसी को बहुत गुस्सा आ जाता है तो हम क्या कहते हैं, उसको अपना अभिमान बहुत है ना, वो अभिमान को ठेस लगी तो गुस्सा कैसे आ गया। तो जहां ये सात बुराइयां हैं उसके वशीभूत जब हमारे हर कर्म व्यवहार होते हैं तब उसको देह अभिमान कहा जाता है। वैसे ही आत्मस्थिति किसको कही जाती है? आत्म अभिमान अर्थात जहाँ हमारे संकल्प भावना वृत्ति बोल चाल व्यवहार आत्मा के गुणों के आधार पर होता है, शांति सुख प्रेम पवित्रता ज्ञान शक्ति आनंद उसको लेकर के जब है तब उसको आत्म अभिमानी कहते हैं। जब कोई व्यक्ति बड़े शांत मधुर भाषी और शुद्ध भावना से बातें करते हैं तो हम क्या कहते हैं, ये तो जैसे देवता है, उसको जरा भी अपना अभिमान नहीं है, इतना बड़ा व्यक्ति है तो भी उसको अभिमान नहीं है, देखो कितना निर्माणता से प्यार से शांति से बात करता है, कहते हैं ना। तो जीवन के अंदर अभिमान और आत्मस्थिति किसको कहते हैं उसका अनुभव हमें है, और इसीलिए इस जीवन को भी योग कहा गया है जहाँ शरीर और आत्मा का संबंध है। शरीर तो एक हड्डी मांस का पुतला है, उसमें जब आत्मा की प्रवेशता होती है तब उसको जीवात्मा कहा, और इसीलिए ये जीवन भी एक योग है जहाँ शरीर और आत्मा का संबंध हुआ। अकेली आत्मा है तो भी जीवन नहीं है, अकेला शरीर है तो भी जीवन नहीं है। इस जीवन के अंदर शरीर की वास्तविकता को हम बहुत अच्छी तरह जानते हैं कि ये शरीर अर्थात क्या, पांच तत्व, और इसीलिए शरीर को जीवन जीने के लिए वही पांच तत्व चाहिए। इसी प्रकार इस शरीर के अंदर जो चैतन्य आत्मा है जीवन जीने के लिए उसको भी कुछ आवश्यकता है, शरीर को तो पांच तत्व चाहिए, जीवन जीने के लिए आत्मा को क्या चाहिए, आत्मा को कुछ चाहिए या नहीं चाहिए, क्या चाहिए आत्मा को जीवन जीने के लिए, जीवन में आत्मा को क्या चाहिए, शांति चाहिए और क्या चाहिए। जीवन में आत्मा को सात बातें चाहिए जीवन जीने के लिए। सबसे पहला है ज्ञान समझ। बच्चा जब पैदा होता है उसके सामने कोई भी छोटा सा आवाज भी करो तो उसकी जिज्ञासा होती है आवाज कहाँ से आया, जानने की जिज्ञासा। तो सर्वप्रथम ज्ञान चाहिए, क्योंकि जहाँ ज्ञान होगा वहाँ उजाला है, प्रकाश है। इसीलिए तो भगवान को प्रार्थना में भी सबसे पहली प्रार्थना हमें बचपन से यही सिखाई जाती, अज्ञान से ज्ञान की ओर ले चलो हे प्रभु, अंधकार से प्रकाश की ओर ले चलो हे प्रभु। ज्ञान क्यों चाहिए, क्योंकि ज्ञान बिना शुद्धि नहीं, आत्म शुद्धि प्यूरिटी प्यूरिफिकेशन जो है ज्ञान से ही प्राप्त होती है। इसीलिए भक्ति करता है इंसान, गंगा स्नान करता है, पूछो किस लिए करता है, कहते आत्म शुद्धि के लिए। शुद्धि हमें हर पल चाहिए व्यवहार के अंदर। कई बार हम देखते हैं किसी दो व्यक्ति की आपस में बहुत अच्छी दोस्ती होती है, कुछ समय के बाद देखो वो दोस्ती टूट जाती है, पूछो आपकी तो बहुत अच्छी दोस्ती थी क्या हुआ, तो क्या कहते हैं, बाद में पता चला इसका अंदर कुछ और बाहर कुछ था, बाहर से बड़ी सफाई वाली बातें कर रहा था लेकिन अंदर इसका मन बड़ा मैला था, हमें अच्छा नहीं लगा, दूर हो गए हम, खतरा महसूस हुआ, इसीलिए दूर हो जाता है, भले वो इंसान उसको कहे या न कहे, लेकिन फिर भी जहाँ व्यवहार में अगर शुद्धि नहीं है, शुद्ध भावनाएं नहीं है, वहाँ धीरे धीरे व्यक्ति उससे दूर हो जाता है। और उसके बदले में कोई बहुत भोला इंसान होता है जिसका अंदर बाहर एक, कोई अलग नहीं, तो क्या कहते उसके लिए, ये तो भगवान का बंदा है, उसका अंदर बाहर एकदम साफ ट्रांसपेरेंट है, उससे कोई खतरा नहीं होगा। और जो अंदर बाहर एक नहीं है उसके लिए कहेंगे इज अ डेंजरस मैन, बड़ा डेंजरस है, खतरनाक है, पता ही नहीं चलता इसके अंदर क्या होता है और कहां वो अपने को ठोकर मार देगा, पता नहीं चलता है। इसलिए दूर रहो, दो कदम उससे दूर ही चलो, ज्यादा अच्छा रहेगा, कहते हैं ना ऐसा। तो भले वो व्यक्ति समझता हो कि मैं इतनी चालाकी करूंगा तो किसी को पता नहीं चलेगा कि मेरे अंदर की बात क्या है, लेकिन ऐसा होता है, कितनी भी वो चालाकी क्यों न करे लेकिन भीतर के भावनाएं थोड़े समय के बाद बाहर दिखाई पड़ने लगती है। जहाँ ज्ञान है वहाँ शुद्धि अपने आप आती है, क्योंकि हर बात की जब स्पष्ट समझ है कि अगर ये करेंगे तो भी हम अपने आप को धोखा दे रहे हैं, दूसरे किसी को नहीं धोखा दे रहे हैं, तो उससे क्या होगा कि व्यक्ति अपने आप में परिवर्तन करने लगता है। और उसी से ही हरेक के साथ का जो व्यवहार है उसमें मैन्युपुलेशन नहीं होगा लेकिन एक प्रेम भरा व्यवहार होगा। और जहां ये तीनों है, समझ, शुद्धि और प्रेम, वहां उस संबंध में क्या होगा, जीवन में क्या होगा, शांति होगी। और उसी से ही जीवन में सच्चा सुख का अनुभव होता है। सुख बाह्य चीजों से प्राप्त नहीं होता है, सुख सुविधा के साधन, बाह्यता को सुख का अनुभव कराता है ये शरीर को, मन को नहीं। मन के सुख का आधार है ये चार बातें, समझ, शुद्धि, प्रेम और शांति। तभी तो इंसान कई बार कह देता है, कहने में भी, कि मुझे कोई महल नहीं चाहिए, छोटा घर होगा तो चलेगा, लेकिन सुख से जीवन जीना है। महल हो लेकिन सुख न हो, टेंशन ही टेंशन हो, मन की शांति न हो तो चलेगा नहीं, चलेगा। तो जहां ये चार बातें हैं वहां जीवन में सच्चा सुख का अनुभव होता है। और उस सुख की अनुभूति हमें आनंद की ओर ले चलती है। आनंद मनोरंजन साधनों से टेम्पररी मिल सकता है, लेकिन सदाकाल आनंद की स्थिति अगर जो है, इसलिए कई ने कहा है कि जीवन की सर्वोच्च प्राप्ति अगर है तो वह है आनंद की अनुभूति, जिसके लिए बड़े बड़े महात्माओं ने भी अपने नाम के पीछे आनंद जोड़ा, ताकि बार बार ये स्मृति रहे कि हमें आनंद का अनुभव करना है। और इसीलिए उन्होंने कोई एक वैल्यू को लेकर के आनंद के साथ जोड़ा कि इसके साथ ही आनंद का अनुभव हो सकता है। किसी ने अपने नाम के पीछे सत्यानंद, अर्थात सत्य की वैल्यू को लेकर चलेंगे तो आनंद का अनुभव होगा। किसी ने कहा मुक्तानंद, अर्थात मुक्त रहो आसक्तियों से तो आनंद का अनुभव होगा। किसी ने कहा दयानंद, दया की वैल्यू को अपनाओ तो आनंद का अनुभव होगा। ऐसे अलग अलग वैल्यू को लेकर के चले और अपना नाम ही उसी आधार पर रख दिया, ताकि ये स्मृति निरंतर बनी रहे कि मेरे जीवन की प्राप्ति का लक्ष्य है आनंद।
आत्मा को ज्ञान के भोजन के साथ साथ योग की अनुभूति करना भी बहुत जरूरी है, क्योंकि यह योग ही है जो ज्ञान में शक्ति भरता है। तो आइए चलते हैं हमारे अगले सेगमेंट राजयोग की अनुभूति, जहां हम अपने विचारों को आध्यात्मिकता की ओर लेके जा सकते हैं।
सृष्टि रूपी इस मंच पर एक एक्टर का चोला पहने हुए इस नश्वर शरीर में मस्तक के मध्य विराजमान मैं एक आत्मा हूँ। मैं आत्मा अति सूक्ष्म ज्योति बिंदु दिव्य सितारा हूँ। मैं आत्मा सर्व शक्तियों का भंडार हूँ। मैं आत्मा एक शक्ति हूँ। मैं आत्मा शांत स्वरूप हूँ। शांति ही मेरा स्वधर्म है। मैं आत्मा आनंद स्वरूप हूँ। खुश रहना मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है। प्रेम से रहना मेरा कर्तव्य है। मैं आत्मा ज्ञान स्वरूप हूँ। सदैव अच्छा सोचना मेरा कर्म है। ये सब शक्तियां ही मेरी पहचान है। कितना अद्भुत है कि मैं छोटी सी सूक्ष्म आत्मा इन सभी शक्तियों की मालिक हूँ। फिर क्यों मैं आत्मा उदास दुखी या चिंतित हो जाती हूँ? मैं सर्व शक्तियों की अधिकारी आत्मा हूँ। मेरी शक्तियाँ ही मेरी पहचान हैं। सचमुच मैं आत्मा कितना हल्का अनुभव कर रही हूँ। मैं आत्मा सदैव अपनी शक्तियाँ याद करते हुए अपना जीवन विजय बनाऊंगी। ओम शांति।
हम आपसे विदा लेते हैं। नमस्कार।